आगे रिकॉर्ड नंबर 655 से 63 टॉपिक है मुशरिकीन से मुबाहला। मुबाहला एक टर्म है, जब आपस में बातचीत ना हो रही हो या कोई बहुत इख्तलाफ हो जाए तो दोनों फरीक आमने सामने बैठकर बात को समझने की कोशिश करते हैं। इस काल अल्लाह या ईसा, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुझे कुफार से पाक करने वाला हूँ और तेरे ताबेदारों को यानी फॉलोअर्स को कुफार के ऊपर गालिब करने वाला हूँ क्यामत के दिन तक, फिर तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है, मैं ही तुम्हारे आपस के तमाम तर इख्तलाफात का फैसला करूंगा, फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त तर अजाब दूंगा और इनका कोई मददगार ना होगा, लेकिन ईमान वालों और नेक अमाल करने वालों को अल्लाह ताला इनका सवाब पूरा पूरा देगा और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं आयतें हैं, हिकमत वाली नसीहत हैं। अल्लाह ताला के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हू बहू आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, जिसे मट्टी से बनाकर कह दिया कि हो जा, पस वो हो गया। तेरे रब की तरफ से हक यही है, खबरदार शक करने वालों में से ना हो जाना। कैसे अल्लाह ताला अपने नबियों को गाइडलाइन देते हैं। इसलिए जो शख्स इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इनमें झगड़ा करे तो कह दीजिए कि आओ हम तुम अपने अपने फर्जंदों को और हम तुम अपनी अपनी औरतों को और हम तुम खास खास अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजजी के साथ इल्तजा करें और झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। यकीनन सिर्फ यही सच्चा बयान है और कोई माबूदे बरहक नहीं सिवाय अल्लाह के, और बेशक गालिब और हिकमत वाला अल्लाह ताला ही है। फिर भी अगर कबूल ना करें तो अल्लाह ताला भी सही तौर पर फसाद करने वालों को जानता है। कुरान को पढ़ने के बाद वाकई ऐसे लगता है कि हम अल्लाह से बातें करना छोड़कर अपने ऊपर जुल्म करते हैं। आप देखिए कि इस रुकू में भी ईमान वालों से मुतल्लिक जो बात की गई वो क्या है, 57 आले इमरान, वामल्लज़ीना मनु वामिलुस्सालिहाती फयुवफ्फीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। क्या पता चला, फेथ इन एक्शन, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। क्या पता चला, एक कोट लिखिए, इस्लाम इसम नहीं फेल है, सिर्फ इस्लाम के नाम से जन्नत नहीं मिलेगी, अमल करके दिखाना पड़ेगा। ये है फेथ इन एक्शन, आमनु व आमिलु सालिहात। दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के बेटे नहीं, मट्टी से बने हुए इंसान थे। और अगली बात, कुरान में अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली बशारतों को पाने के लिए ईमान लाने के बाद नेक आमाल करना जरूरी है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे जी रुकू नंबर 764 से 71, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आला मुकाम, और साथ ही साथ जो पहली आयत आ रही है उसमें दावत देने का खूबसूरत तरीका। कुल या अहलल किताबी तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आप कह दीजिए कि अहले किताब ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में तुम में बराबर है, कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें, ना इसके साथ किसी को शरीक बनाए, ना अल्लाह को छोड़कर आपस में एक दूसरे को ही रब बनाए, बस अगर वो मुंह फेर लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान हैं। ऐ अहले किताब, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो इनके बाद नाजिल की गई, क्या तुम फिर भी नहीं समझते? सुनो, तुम लोग इसमें झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, अब तुम फिर इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म ही नहीं? और अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी, बल्कि वो तो यक तरफा यानी फोकस्ड मुसलमान थे, खालिस, और वो मुशरिकों में से भी ना थे। अल्लाह यही खूबियां हमारे अंदर भी डाल दे। सब लोगों से ज्यादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नजदीक तर वो लोग हैं जिन्होंने इनका कहा माना, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, यानी अल्लाह के नबी को हजरत इब्राहिम के साथ जोड़ा जा रहा है। और जो लोग ईमान लाए, मोमिनों का वली और सहारा तो अल्लाह ही है। अहले किताब की एक जमात चाहती है कि तुम्हें गुमराह कर दें, दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं। अहले किताब, तुम बावजूद कायल होने के फिर भी जानते बूझते अल्लाह तला की आयतों का कुफर क्यों कर रहे हो? अहले किताब बावजूद जानने के हक को बातिल को क्यों खलत मलत कर रहे हो और क्यों हक को छुपा रहे हो। क्या पता चला ईमान वालों को एक और पैगाम इस रुकू में मिल रहा है, और वो क्या है? आयत 68 आले इमरान, इन्ना उलन नासिब इब्राहिम अलल्लज़ीन तबऊ हुवा हाज़न नबीश। इब्राहिम से निस्बत के हकदार तो वो लोग हैं जो ईमान लाए और उसकी पैरवी करते हैं, और ये नबी भी। क्या पता चला ईमान लाने वालों के काम अल्लाह बनाता है और वो अल्लाह के काम करते हैं, अल्लाह उनके काम करता है। फिर इसमें हमने इल्म और दलील के बगैर महज बहस नहीं करनी, ये अमल सीखा। हर किस्म के शिर्क से भी बचना है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि यकसू और फोकस मुसलमान थे, तो हमने भी यकसू होना है। अब तो फोकस हो जाना चाहिए, जिंदगी कहीं भी पूरी हो जाए कम अज कम ये ना रिग्रेट हो कि सारी की सारी जिंदगी जाया करके आगे आगे देखिए। रुकू नंबर 8 है, आयत 72 से 80। अहले किताब का ईमान। वकाल ताइफतु मिन अहलिल किताब, और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है इस पर दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के वक्त काफिर बन जाओ ताकि ये लोग भी पलट जाएं। आपने देखी ऐसी हो रही है, साजिश है लोगों को इस्लाम से दूर करने के लिए। आज भी ऐसे हथकंडे हैं कि शो करो कि तुम मुसलमान हो, थोड़े दिन के बाद छोड़ दो। नहीं, हमें तो कुछ नहीं मजा आया। जैसे मिसाल है कि आप सब तो मशाल्लाह मोहब्बत से आ रहे हैं, कोई इसलिए आए कि जरा एक दिन जाकर क्यों? कुछ भी नहीं था, कोई फायदा ही नहीं हुआ, सब कुछ आता है और ये और थक जाते। यानी इंसान कभी कभी दूसरों को हक से या हिदायत से रोकने के लिए ऐसे जुमले बोलता है कि अगला सोचता है कि ये मेरी हमदर्दी कर रहा है, लेकिन असल में वो दुश्मनी कर रहा होता है। फिर आगे फरमाया, और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और किसी का यकीन ना करो। ये क्या है? गिरोहबंदी, फिरकाबाजी? ना ना ना, उनको ना सुनना, उसकी ना सुनना, फलां की ना सुनना। यहूद ये काम मदीना में अल्लाह के नबी के साथियों के साथ करते रहते थे। आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है, और ये भी कहते हैं कि इस बात का यकीन ना करो कि कोई इस जैसा दिया जाए जैसा तुम दिए गए हो, या ये कि ये तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ताला ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे इसे दे, और अल्लाह ताला वुसअत वाला और जानने वाला है। यख्तसु बिरहमती, वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मखसूस कर ले, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे लिए अपनी रहमत का फैसला कर दे। बस अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर आप इन्हें खजाने का अमीन बना दें तो भी वो तुझे वापस कर दें, और इनमें से बाज ऐसे भी हैं कि अगर तू इन्हें एक दीनार भी अमानतन दे दे तो वो तुझे अदा ना करें। यानी हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, कुछ तो 1 रुपए की भी केयर करते हैं और कोई हजारों की भी नहीं करते। हाँ, ये और बात है कि तू इसके सर पर ही खड़ा रहे, ये इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों यानी गैर यहूद के हक का कोई गुनाह नहीं। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं, कुछ फहमियों की हद है। कहते पूरी दुनिया हमारी है। जेंटाइल एंड गोयम का नजरिया सामने रख लीजिए, जिस मुल्क पे हम कब्जा करें, जिस इंसान को हम कहें, जिस रिसोर्स को ले लें, हमारा है, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए बनी है। अब मैं इस चीज की अपने आप को मालिक कहूंगी तो मैं तो जो चीज मर्जी उठा लूं, आपकी क्या जरूरत है मुझे रोकने की? ये है पीछे स्ट्रेटेजी, ये माइंड सेट है कि दुनिया बनी हमारे लिए, इसलिए हम जो मर्जी करें। और उसकी वजह से पूरी दुनिया में आप देखिए जो फसाद हो, वो कहते हैं तो हमारा। याद रखिए, जब बंदा अपने जुर्म को समझ जाता है ना तो छोड़ देता है। बड़े से बड़ा मुजरिम भी अपने आप को हक पे समझते हुए जुर्म कर रहा होता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं इनकी खुशफहमी दूर कर दो, क्यों नहीं पकड़ होगी। अल्बत्ता जो शख्स अपना इकरार पूरा करे और परहेजगारी करे तो अल्लाह ताला भी ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता। बेशक जो लोग अल्लाह ताला के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ना तो इनसे बातचीत करेगा, ना ही इनकी तरफ कयामत के दिन देखेगा, और ना इन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यकीनन इनमें से एक गिरोह ऐसा भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी जुबान मरोड़ता है, यानी मफहूम को बदल लेता है, ट्विस्ट कर लेता है टंग को, ताकि तुम इसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं। और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि दरअसल वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं। वो तो जानते बूझते अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं। किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह ताला किताबो हिकमत और नबूवत दे, ये लायक नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, कूनू रब्बानीयीन, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ, तुम्हें किताब सिखाने के बायस और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब। और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें नबी और फरिश्तों को रब बना लेने का हुक्म दे, क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? देखिए पूरे इस पारे में आप नोट करें इस्लाम का लफ्ज कितना, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और आज आप और मैं मुसलमान है, कितनी खुशकिस्मती है। ईमान से मुतल्लिक इस रुकू में अगर आप देखें तीन आयात हैं, 72 आले इमरान, जिसमें एक साजिश थी, वकालत ताइफतु मिन अहलिल किताबी आमिनु बिल्लजी उन्जिला अलल्लजीना आमनु वजहन नहार, क्या पता चला कुछ दिलों में हक अंदर नहीं जाता क्योंकि पहले से बातिल मौजूद है। किसी का बातिल निकाले ताकि अंदर हक जाए। बच्चों को भी जब सिखाते हैं, घर वालों को भी कुछ कहते हैं ना, तो पहले जाकर समझिए कि उसका क्या मसला है, अगले का पहले प्रॉब्लम हल करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आगे जाइए। फिर आल इमरान 73, कुल इन्नल खुदा हुदल्ला, क्या पैगाम है कि हिदायत अल्लाह का फजल है। और आयत 75 आल इमरान में, अहले किताब में कुछ ईमानदार और कुछ खाइन है, कोई भी कौम पूरी गलत नहीं होती और कोई भी कौम पूरी ठीक नहीं होती, तो इसमें भी ईमान की ये बातें मौजूद हैं। फिर इसके बाद मुनाफिकीन के पोल खोल दिए गए, उनकी कलई खोल दी गई, क्या पता चला कि हर मुआशरे में कुछ ना कुछ लोग तो मुनाफिक होंगे, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अल्लाह ताला जिसको चाहे फजल से नवाज दें, ये उसका फैसला है। अहले किताब में कुछ ईमानदार भी हैं और कुछ खाइन भी हैं। आपने मैंने फेथ इन एक्शन के नाम पे क्या करना है, अमानतों में खयानत नहीं करनी। आपको मुझे अल्लाह ने जिस जिम्मेदारी पे रखा है, चाहे वो माली है या वक्त है या रिसोर्सेज हैं, उसकी हिफाजत करनी है। हर काम में अल्लाह ताला से हिदायत तलब करनी है और लोगों को अल्लाह ताला से जोड़ना है, खुद से नहीं। अल्लाह ने पैगाम दिया ना कि अंबिया कराम खुद से नहीं जोड़ते थे लोगों को, बल्कि अल्लाह ताला से जोड़ते थे। और उसके बाद फिर जब बंदे अल्लाह से जुड़ते हैं तो खुद ब खुद उनको अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही की फिक्र लगती है। आगे है जी रुकू नंबर 9 आयत 81 से 91, जरा सा इसको मोहब्बत से सुनिए। रब्बुल आलमीन की कामिल कुदरत, यहाँ है वो पैगाम जिस पे पारे का थीम था, मिसाकुन नबीजीन, वही सखज़ल्लाहु मिसाकन नबीजीन। जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना और इसकी मदद करना जरूरी है। रुकिए जरा, आप और मैं तो अल्लाह के नबी के उम्मती हैं। ये अहद आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी से अल्लाह ने यह अहद लिया था। इसकी रोशनी में आज हर गैर मुस्लिम यानी अहले किताब को मुसलमान होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी किताबों में ये बात लिखी थी कि जब तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे तो तुम उनको मानोगे। फिर क्या फरमाया, फरमाया कि क्या तुम इसके इकरारी हो, यानी जैसे अहद लिया जाता है तो इकरार कराते हैं ना वर्बली, बोलो अब तुम भी, और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो। सब ने कहा कि हमें इकरार है। फरमाया तुम अब गवाह रहो और खुद भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूं, बस इसके बाद भी जो पलट जाएं वो यकीनन पूरे के पूरे नाफरमान हैं। क्या पता चला, किसी ने बड़ा प्यारा कमेंट दिया कि जब अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत का अहद लेना था, सूरत अल अराफ में हम पढ़ेंगे, तो सबको बुला लिया, खासो आम को, मुसलमान, काफिर, फाजिर, गोरे, काले, सबको बुला लिया। और जब नबी का अहद लेना था कि नबी की रिसालत को मानो, तो सिर्फ चुने हुए लोग अंबिया कराम को भेजा। और आप अपनी खुशबख्ती पे शुक्र करिए, अल्लाह की तारीफ कीजिए कि हम उस नबी के उम्मती हैं। भोल पने में कोई चीज मिल जाती है ना, तो वो माले मुफ्त दिले बेरहम हो जाती है। आज हम मुसलमानों को इसका एहसास नहीं है। आज हम कभी भी अपनी जिंदगी ना जाया करें, हम तो सर ना सजदों से उठाएं तो काफी था। तो लिहाजा अल्लाह ताला आप दिखा रहे हैं कि इस्लाम कैसा प्यारा दीन है। क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा और दीन की तलाश में है? हालांकि तमाम आसमानों वाले और सब जमीन वाले अल्लाह ताला ही के फरमाबरदार हैं, खुशी से हों या ना खुशी से, सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। आप खुशी से मुस्लिम हैं कि गैर खुशी से? आर वी मुस्लिम बाय चॉइस और बाय चांस? तुक्का लगा हुआ है। बोलिए क्या मुस्लिम भाई चॉइस है इंशाल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है और जो कुछ इब्राहिम अलैहि सलाम और इस्माइल अलैहि सलाम और इसहाक अलैहि सलाम और याकूब अलैहि सलाम और इनकी औलाद पर उतारा गया है और जो कुछ मूसा और ईसा अलैहिम सलाम पर और दूसरे अम्बिया अलैहिम सलाम पर यानी अल्लाह की तरफ से उनको दिया गया इन सब पर ईमान लाए और हम इनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते और हम अल्लाह ताला के फरमा बरदार हैं। क्या पता चला कि सारे नबी एक ही कड़ी थे, एक ही काफला था। अब जरा से इस जुमले पे कान लगाइए, जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे इसका दीन कबूल ना किया जाएगा और आखरत में नुकसान पाने वालों में होगा। सोचिए जरा, हम अपने बच्चों को ये जुमला कह सकते हैं? देखिए अमेरिका में कौन सी करेंसी कबूल होती है? अमेरिकन। नॉर्वे में नॉर्वेजियन, कनाडा में कैनेडियन। ठीक है आज मनी एक्सचेंज बहुत सारे हैं, क्यामत के दिन देर विल बी नो मनी एक्सचेंज, सिर्फ इस्लाम का सिक्का चलेगा। ये अल्लाह का वादा है दुनिया में भी और आखिरत में। अब इस जुमले को उम्मत मुस्लिमा की, जिसको मैं एक जुमले में बोलूं तो आप गलत ना समझिएगा, उम्मत मरहुमा कौन होती है? फौत हो गई, क्योंकि हमारे कल्चर में ये जो फौत हो जाए उसको कहते हैं मरहूमो मकबूर। नहीं अल्लाह के बंदो, मरहूमा जिस पे रहम किया गया। हम भी मरहूम इसलिए कहते हैं कि अल्लाह उन पे रहम करे, मफूल के वजन पे। उम्मत मरहूमा के लोगों को जहन में लाकर जरा इस आयत को सुनिए, आंसुओं से आपका पारा गीला हो जाए अगर आपको ये आयत समझ आ जाए। मुझे भी अल्लाह ताला इन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो ईमान लाने और रसूल की सच्चाई की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी काफिर हो जाएं। ये नौहा है, ये मरसिया है, ये उम्मत मुस्लिमा का है कि तुम्हारे इन मजहब के खाते में इधर तो लफ्ज इस्लाम दिखे और उधर ना दिखे तो तुम्हें कहाँ से हिदायत मिलनी है। अल्लाह ताला ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास्त पर नहीं लाता, इनकी तो यही सजा है। जरा सुनिए उम्मत मुस्लिमा इस वक्त किस सजा से गुजर रही है। इन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो। यानी लोग तोए तोए नहीं करते, हमें बुरा नहीं कहते, गाली नहीं है लफ्ज इस्लाम। मुसलमान को लोग क्या समझते, ठोकरों में रखा हुआ है आज इस्लाम को, जिसमें ये हमेशा पड़े रहे। ना तो इनसे अजाब हल्का किया जाए और ना इन्हें मोहलत दी जाए। आज दुआएं कितनी मांगी जा रही है हरम में, कितने हाजी नमाजी उम्रे वाले काबे के पर्दे पकड़ पकड़ कर दुआएं करते हैं उम्मत के लिए, लेकिन अल्लाह सुन ही नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह कहते तुम डिजर्व नहीं करते इस बात को। क्या करें फिर, गम पड़ गया तो फरमाया मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इसलाह कर लें तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। बेशक जो लोग अपने ईमान लाने के बाद कुफर करें, दुआ करिए अल्लाह मैं ऐसा ना करना, फिर कुफर में और बढ़ जाएं, इनकी तौबा हरगिज हरगिज कबूल ना की जाएगी, यही गुमराह लोग हैं। हाँ जो लोग कुफर करें और मरते दम तक काफिर रहें, इनमें से कोई अगर जमीन भर सोना दे गो फिदिये में ही हो तो भी हरगिज कबूल ना किया जाएगा, यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब है और जिनका कोई मददगार ना होगा। आप देखिए आखिरी आयतें पारे की और 4 दफा ईमान का तज़किरा है इसके अंदर। कम अज कम आपको इस साल ये तो एहसास हो रहा है ना कि इतना जिक्र है कुरान में ईमान का, और हम ईमान को पीछे करके छोटी छोटी बहसों में पड़े रहते हैं। पहली आयत 81 आल इमरान, टॉपिक क्या है? रसूलुल्लाह को मानना मगर इतात न करना बदबख्ती और महरूमी है। सुम्मा जाकुम रसूल, अल्लाह ने तो कह दिया। फिर आयत 84 आल इमरान, फुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्जिला इलैना, पूरा ईमान पूरी इताअत के साथ कबूल होगा और मिलेगा। यानी ईमान बढ़ता है इताअत से और इताअत बढ़ती है ईमान से, ये जुमला लिख लीजिए। फिर 86 आले इमरान, कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरु बादा ईमानिहिम, हिदायत की बुनियादी शर्त इखलास से नियत है। और फिर आयत 90 आले इमरान, इन्नल्लज़ीना कफरु बादा ईमानिहिम, तौबा का वक्त आज है कल नहीं, मौत से पहले अल्लाह ताला से मुलाकात की तैयारी करनी है। तो पारे के एंड पे फेथ इन एक्शन के जो पॉइंट आपको इस पूरे पारे में से मिले, नंबर एक तमाम अंबिया कराम को मानना है, उनकी फजीलतों के पीछे लगकर किसी का इनकार नहीं करना, गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करनी है और हालत ईमान पर मरने की दुआ करनी है। अब सवाल एक पैदा होता है कि ये सब कैसे होगा जब आपका ईमान पुख्ता होगा। तो जरा सा सोचिए, ईमान की शाखें कितनी की है अभी? चार। आइए जरा हदीस के साथ दोहरवा दूं आपको। अन अबी हुरैरा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल अल ईमानु बिदुम व सबऊना शोबा अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अदनाहा इमातुल अज़्मी अनित तरीकी वल हयाउ शोबतु मिनल ईमान। अबू दाऊद की रिवायत 4676। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईमान की 70 से कुछ ज्यादा शाखें हैं, इनमें सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह हमने कब की? पारा 1 के फर्स्ट हाफ में। और सबसे कमतर रास्ते से हड्डी हटाना है, और हया ईमान की एक शाखा। ये दोनों एंड पे आएंगे आखिरी पारों के साथ, तरतीब के साथ हम चलेंगे। एक और रिवायत में थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज हैं, और वो क्या है? अल ईमान बिद व सबून अफदलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अदनाहा इमातुल अज़्मी अनित तरीकी वल हयातु शोबतु मिनल ईमान। तो इससे क्या पता चलता है कि ईमान की पहली शाख ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको जुबानी याद करनी है ये शाखें। दूसरी क्या थी? रसूलों पर ईमान। तीसरी क्या थी? फरिश्तों पर ईमान। चौथी किताबों पर ईमान। आज हम पांचवी और छठी लेंगे, तकदीर पर ईमान। खैर और शर की तकदीर पर ईमान लाना। तकदीर के बारे में आज उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं कुछ कोड वर्ड्स में आपको बताना चाहूंगी और रिकमेंड कर दूंगी बाद में कि आपने ये लेक्चर सुनना है। और मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, जब भी मैंने तकदीर पे बात की अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोलकर और बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप पे बात की है। तो तकदीर के बारे में पहले आपको एक बात बिल्कुल बगैर किसी पेपर पे लिखी भी बोल दूं, जिससे 90% आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। है ना जहनों में क्वेश्चन, तकदीर, किस्मत, किस्मत अच्छी, किस्मत बुरी, अच्छा लिखा हुआ है तो फिर हम क्या करें, और दुआओं से और ये वो। तो एक जुमला लिखिए, तकदीर इल्मे इलाही है, हुक्म इलाही नहीं। तकदीर अल्लाह का इल्म है, नॉलेज है, हुक्म नहीं है। हुक्म होता तो हम फंस जाते। अल्लाह ने जब हुक्म ही दे दिया कि गुनाह करो, तब हम कैसे ना देखें फिल्म? तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हमने नमाज पढ़ी, अल्लाह का हुक्म था, हमें क्यों मिले सवाब? ठीक है, चलिए इसके बारे में नोट कीजिए चंद चीजें। खैर और शर की तकदीर अल्लाह के हाथ पे है। हमारा ईमान है कि खैर भी जो हमें मिलती है ना, वो अल्लाह की तरफ से मिलती है, और जो शर भी पहुंचता है वो भी अल्लाह के हुक्म से मिलता है। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, दिलों के राज जानते हैं। अल्लाह को खूब इल्म है कि आपके मेरे हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं। तकदीर पर बरज़ और रग़बत ईमान लाना चाहिए, मारे बांधे नहीं। सूरत कमर 49 में आता है, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, हमने हर चीज़ को एक तकदीर के साथ पैदा किया। अब कज़ा और कदर दो लफ्ज़ आते हैं इसके लिए अमूमन। कज़ा और कदर क्या है? कज़ा कहते हैं हुक्म को, कदर कहते हैं अंदाज़ा लगाने को। यानी आप खाना बना रहे थे तो आपने सोच लिया कि आज पुलाव बनेगा, ये कज़ा है। पुलाव में कितना पानी, चावल, दूध डलेंगे, अंदाजा, कितनी देर पकाना, ये अंदाजा लगाना है आपके लिए। कजा है प्लान करना, ये घर बनेगा, कजा, नक्शा बना। अब उसका बनाना, अंदाजा, कितना ईंट पत्थर, ये है उसका एस्टिमेशन। अंदाजे को एस्टिमेशन लिख सकते हैं आप लोग। कजा अल्लाह का हुक्म है और कदर उसका अंदाजा लगाना है। यानी कजा और कदर को जोड़ लीजिए, अल्लाह ने बहुत साल पहले इस दुनिया को बनाने से, 500 साल पहले या जितना भी आता है हदीस में, यानी अल्लाह ने इस दुनिया के बनाने से पहले सब चीजों का एस्टीमेट कर लिया था। अब वक्त के साथ साथ वो काम हो रहे हैं, हमें आज पता चल रहे हैं, अल्लाह के पास वो पहले से लिखे हुए थे। सूरत हिजर की आयत 21:21 में आता है, व इम मिन शयइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहू व मा नुनज़्ज़िलुहू इल्ला बिक़दरि मालूम। कोई चीज ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हो, और जिस चीज को भी हम नाजिल करते हैं एक मुकर्रर मिकदार के साथ नाजिल करते हैं। इवन बारिश के कतरे, इवन सर के बाल, फिर हर मखलूक की फितरत और आदत, नफा और नुकसान, उसकी जिंदगी यानी मुद्दत हयात, रहने की जगह, सवाब मिलेगा या सजा मिलेगी, इन सब को कदर कहते हैं। ये एक कॉल है अलामा का कि आप, पता चला हर चीज जो रिटर्न फॉर्म में है ना, ये तकदीर है। कदर ये है कि अल्लाह ने अपने इल्मे अजली से पहले ही खबर दे दी कि बंदा अपने इख्तियार और इरादे से क्या काम करेगा, और अल्लाह ताला ने उसके लिए खैर रखा है कि शर रखा है। ये अल्लामा खत्ताबी कहते हैं। और कुरान पाक की चंद आयतों के सिर्फ नंबर नोट कर लीजिए, अभी बाद में जाकर लिख लीजिएगा। सूरत तलाक की आयत 3, इन अल्लाह बालिग उम्री ही कज्जालल्लाहु कुल्ली शयइन कदरा, अल्लाह ने हर चीज की तकदीर मुकरर की। सूरत फातिर आयत 11 11 क्या बताती है, वमा तहमिलु मिन उन्सा, कोई औरत हामिला नहीं होती और ना बच्चा जनती, मगर ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में होता है। कोई उम्र पाने वाला उम्र नहीं पाता और ना किसी की उम्र में कुछ कमी होती है, मगर एक किताब में पहले से लिखा हुआ। आप कहते हैं कैसे? अल्लाह कहते हैं अल्लाह के लिए बहुत आसान है, इन्न ज़ालिका अलल्लाह यसीर। इसी तरह सूरत तौबा की आयत 51 वो क्या है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना हुवा मौलाना वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून। इनसे कहो हमें हरगिज कोई बुराई नहीं पहुंचती मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी। तो क्या पता चला, तकदीर से कोई आगे नहीं जा सकता। कुरान पाक क्या कहता है इसके बारे में, जरा सा नोट कर लीजिए। यानी इंसान का कसब कमाना और इख्तियार कितना है, अल्लाह का कितना है और बंदे का कितना है, इसको यूं समझिए। तो सूरत बलद की आयत देखिए, अलम नजल्लहु ऐनैन वलिसानम वशफतैन, क्या हमने दो आंखें और एक जुबान और दो होंठ नहीं दिए? ये दे दिए ना। वहदैनाहु नजदैन, अब तरीका भी सिखा दिया कि तुमने कैसे इस्तेमाल करना है इसको। क्या पता चला कि अल्लाह ने हमें मजबूर नहीं पैदा किया, साथ इख्तियार भी दिया। तो क्या पता चला तकदीर पर ईमान में क्या क्या आता है, उंगलियों पे गिनिए। नंबर 1, अल्लाह पर ईमान इसी का हिस्सा है। अल्लाह के फैसलों में हिकमत है, तकदीर में बहस नहीं, तकदीर में अकली दलाइल नहीं। और एक जुमला अक्सर मेरे मुंह से निकलता है कि तकदीर से लड़ना नहीं है, कबूल करना है। सहाबाए कराम ने अल्लाह के नबी से पूछा कि हम तकदीर पे भरोसा करके बैठे रहें, तो आपने फरमाया जफल कलमु बिमा अंत लाकिन, तुम्हें जो कुछ मिलने वाला है इसे लिख कर कलम खुश्क हो गए। ये निसाई की रिवायत है 3217। खुलासा दे देती हूँ, इंसान मजबूरे महज नहीं, अल्लाह ने सलाहियतें और अहलियत देकर भेजा है। अब कोशिश और मेहनत करना आपका मेरा काम है, और कजा और कदर सही और अमल में मुताबकत है, यानी जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और सूरत अनकबूत की 69 आयत आखिरी आयत है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, में अल्लाह ने बता दिया जो हमारे रास्ते में कोशिशें करेंगे हम उनको जरूर अपने रास्ते देंगे। तकदीर पर ईमान क्यों लाएं? लिखिए, बड़े प्यारे बेनिफिट्स हैं इसके। इंसान मायूस नहीं होता, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखता है, मुसलसल जिद्दोजहद करता है, सब्र और रजाए इलाही का पैकर बना रहता है। और करेंगे भी क्या, तकदीर को मान लीजिए। तो ये थी 5वीं शाख, और 6ठी शाख पे पूरा कुरान खड़ा है, आखिरत पर ईमान, अकीदे आखिरत पूरे का पूरा इसमें आता है। इस पे तो मैं एक दो जुमला बोल के खत्म कर दूं तो आपको सब पता है, ये कायनात फानी है, एक दिन जिंदगी की रौनकें खत्म हो जाएंगी, सूरज चांद सितारे रोशनियों से महरूम हो जाएंगे, सारे इजरामे फलकी जिसको गैलेक्सीज कहते हैं ये रेजा रेजा हो जाएंगे। एक दिन सब अपने रब के सामने जमा खड़े होंगे, यौम यकूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, और हम सबको हमारे नामे अमाल देकर कहा जाएगा इकरा किताबक कफा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, सूरह बनी इसराइल की आयत 14। और हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी नमाज़ों में ये दुआ करते थे, अल्लामा हासिबनी हिसाब यसीरा। तो मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी आप ये क्या कह रहे हैं, तो आपने फरमाया कि आयशा बस नामे अमाल पे नजर पड़ी और कहा जाओ ये है हिसाब यसीरा, जिसका हिसाब खुल गया वो पकड़ा गया। ये मिश्कात की रिवायत है 5562। तो अपने लिए भी दुआ किया करें, अपने प्यारों के लिए। तो खुलासा, यकीनन रोजे आखरत आएगा, आपका मेरा कोई अमल जाया नहीं किया जाएगा, हर बुरे छोटे बड़े अमल को अल्लाह ने पकड़ लिया तो मारे जाएंगे। आपने मैंने क्या करना है, आखरत की तैयारी के लिए इस नुक्ते को सामने रखना है। वबिल आखिरती हुम यूकिनून, पहला ही पैगाम हमें दिया था अल्लाह ने सूरह बकरा में, और बनी इसराइल की आयत 10 में अल्लाह ने कह दिया कि जो आखरत को ना माने उनको बता दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। تو عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم آخرت پر ایمان لے آؤ گے تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہوگا، سورۃ نساء 59، اور یوم آخرت کو یوم جزا اور سزا بھی کہتے ہیں، اور شروع میں ماں لکھی یوم الدین کہہ دیا۔ میں آج کے اس بارے کو پورا کروں گی، کل نفس ذائقت الموت پہ، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہمیں اپنے اجر پورے کے پورے ملیں گے، اچھے یا برے۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس سارے عمل کو آسان کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اینڈ پہ آخر کی دعا میرے ساتھ مل کے دہرا لیجئے، بالکل دعا کی طرح روتے ہوئے، رونے والی شکلیں بنا کے، روندی ہوئی آوازوں کے ساتھ یہ دعا پڑھتے مانگتے ہوئے جائیے گھروں کو کہ اللہ آج امت مسلمہ کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ تو ہم پہ اپنی رحمت کر دے، ہماری نسلوں پہ اپنی رحمت کر دے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔